हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 3, 4 एंड 5। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अध्यैवमे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्तहे कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्था स्मर्तव्य सततं विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु चेत् सर्वे विद्धि निषेदास्यु एतयोरेव किंकरः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्थो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादहो न परः। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृत्युमेतदेव गोविन्द दामो दरमाधवेति। वंशी विभूषितकरा
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अध्याय 16, जिसका शीर्षक है परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। श्लोक नंबर 3, कृपया मेरे साथ सतुचरण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि आजहाराश्वमेधास्त्री गंगायां भूरि दक्षिणा शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिकोचरा आजहाराश्वमेधास्त्री गंगायां भूरि दक्षिणा शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षिगोचरा। शब्दार्थ, आजहारा अर्थात संपन्न किया अश्वमेध अर्थात अश्वमेध यज्ञ त्रीन यानी तीन गंगायाम गंगा के तट पर भूरी यानी पर्याप्त मात्रा में दक्षिणाम अर्थात दक्षिणाएं पुरस्कार शारद्वतम अर्थात कृपाचार्य को गुरुम यानी गुरु कृत्वा चुनकर देवा देवता देवा तागण और यत्र यानी जहां पर अक्षी गोचरा मतलब दृष्टिगत होना। अनुवाद, कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा के तट पर तीन अश्वमेध यज्ञ किए। उन्हें आगंतुकों एवं निमंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन कर पा सके। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे ध्यान से श्रवण करेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस श्लोक में लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्गृहित यात्रा सुगम है। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने पृथ्वी पर आया करते थे। यहाँ भी हम पाते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य लोकों के देवता यज्ञोत्सव के कारण सामान्य व्यक्ति को भी दिखाई दे रहे थे। देवता सामान्यतः आम लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार भगवान नहीं दिखते, किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के लिए अपनी अहितु की कृपा से अवतरित होते हैं, उसी प्रकार देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि स्वर्ग के प्राणी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से दिखते नहीं हैं, किंतु यह महाराज परीक्षित का प्रताप था कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया। राजागण ऐसे यज्ञों के समय जी खोल कर खर्च करते थे, जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं। बादल आखिर पानी का दूसरा रूप ही तो है, अथवा दूसरे शब्दों में पृथ्वी का पानी ही बादलों में रूपांतरित होता है। सभी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है, किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होने लगती है तो वह आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, उसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया गया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक होता है। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती, अतएव राजतंत्रीय राज्य को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालम् पंघुं लंघयते किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जब संपूर्ण पांडव सामयिक प्रस्थान कर चुके थे, तो उस समय महाराजा परीक्षित ने राज्य स्वीकार किया। और किस प्रकार से राज्य किया? उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों के अनुसार, जो श्रेष्ठ ऋषि थे, द्विज थे, ब्राह्मण थे, उनसे परामर्श लेने के बाद उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया। ये महाराजा परीक्षित वही महाराज परीक्षित हैं जिनको जन्म लेने से पूर्व ही भगवान के दर्शन प्राप्त किए। आजकल हम देखते हैं जीव करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान के दर्शन करने के लिए उत्सुक रहता है, तपस्या करता है, यज्ञ करता है, योग करता है, परंतु कृष्ण की प्राप्ति इतनी सरलता से होती नहीं है। लेकिन यह महाराज परीक्षित इतने पवित्र व्यक्ति थे कि अभी उनका जन्म नहीं हुआ, नेत्र भी नहीं खोले, माता के गर्भ में ही उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो उसके बाद, क्योंकि ये भगवान की इच्छा के पूर्ति के लिए धर्म के साथ राज्य कर रहे थे, तो सारे ऋषियों और मुनियों से आदेश लेकर उसके उपरांत ही अपने राज्य कार्य को करते थे। समय बीता और इन्होंने विवाह किया उत्तर की पुत्री जिसका नाम था इरावती, उनके साथ विवाह किया और उनके चार पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से बड़े का नाम था जन्मेजय, जिन्होंने यज्ञ किया था और समस्त सर्पों को यज्ञ कुंड में जला दिया था। फिर देवता और ऋषि मुनि आए थे, उनके पास आग्रह किया कि आप कृपया ये सारे सर्पों को एक तक्षक सर्प के अपराध का दंड ना दीजिए और ये यज्ञ बंद कर दीजिए, तो उन्होंने यह यज्ञ बंद कर दिया था। आज सूत गोस्वामी महाराज परीक्षित के विषय में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से राज्य किया और फिर अचानक उनके राज्य में कलयुग का आगमन किस प्रकार हुआ और उन्होंने कलयुग के साथ किस तरह से व्यवहार किया। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, आज हारा अश्वमेधा स्त्री, तीन अश्वमेध यज्ञ किए उन्होंने, आज हारा मतलब संपन्न किए तीन अश्वमेध यज्ञ, कहाँ पर, गंगायाम। गंगा इस भौतिक जगत में बहुत ही पवित्र स्थान है, क्योंकि यह गंगा साक्षात भगवान के श्री चरणों से निकली है। जब भगवान वामन महाराज बलि से तीन पग धरती ले रहे थे, उस समय उनका एक पांव, जब उन्होंने एक कदम बढ़ाया था, तो सारे जितने भी लोग हैं उनको क्रॉस करता हुआ इस भौतिक आकाश से भी ऊपर समस्त लोगों को क्रॉस करता हुआ जब जा रहा था, तो जो एक परत है, यानी कि एक भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक परत है और कारण समुद्र है उसके बीच में, कारण समुद्र में कारण दक्षाई विष्णु है, तो उन्होंने जो ऐसे किया था ऊपर, तो कारण समुद्र ये जो परत है, मतलब एक पर्दा है बीच में, उस पर्दे को भी क्रॉस करते वक्त तोड़ दिया था और जब वो पर्दा टूट गया था तो उसमें से जल निकला था और जल सीधा क्योंकि भगवान के चरण को स्पर्श करके आया था, तो फिर वो जल जो है वो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में धारण कर दिया था। और फिर पुनः जब समय आया था राजा सगर की प्रार्थनाओं के द्वारा, जब गंगा को पृथ्वी पर उतारा गया था, तो यही गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है वो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर, मतलब वो वही गंगा थी और पृथ्वी पर लाई गई थी और जिन्हें शिव जी ने अपने जटाओं में समेट लिया था। तो वास्तव में ये गंगा बहुत पवित्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों को स्पर्श करके निकली है। और यह जो भागवतम हम पढ़ रहे हैं वो उससे भी अधिक पवित्र है, क्योंकि यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। ये जो प्रथम दो स्कंद है ना, जैसे पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं और दूसरा स्कंद, शास्त्र कहता है ये दो स्कंद भगवान के चरण कमल हैं। तो वो चरण कमल जिनसे उस जल ने स्पर्श किया तो वो गंगा बन गए। आज भक्तों, हम सब कृष्ण कृपा से उन्हीं चरणों को स्पर्श किए बैठे हैं। जब हम प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के चरणों को स्पर्श किया हो। तो जिस तरह से भगवान के चरणों के स्पर्श को, स्पर्श ने एक साधारण जल को गंगा में परिवर्तित कर दिया, तो हम जैसे अशुद्ध प्राणियों को भी पवित्र करके भगवत भक्ति में प्रेरित कर सकते हैं। ये चरण, ये श्रीमद् भागवतम बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो महाराजा परीक्षित जो है वो गंगा के तट पर तीन यज्ञ किए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए और भूरी दक्षिणा, भूरी का मतलब होता है बहुत बहुत पर्याप्त मात्रा से ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। वास्तव में ये राजाओं का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की और गौओं की जो है वो पर्याप्त मात्रा में रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि जब इस भौतिक जगत में जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनसे वो जो है वो समस्त जितने भी जीव हैं उनको ज्ञान प्रदान करते हैं।
और अगर ब्राह्मणों के जो है ना आवश्यकताएं पूरी हुई होंगी तो वो हृदय से खुश होकर केवल जन कल्याण के लिए ही ज्ञान प्रदान करेंगे। लेकिन यदि ब्राह्मण जो है वो खुद भी परेशान होंगे अपने मतलब अर्निंग के लिए या फिर फाइनेंशियल उनको इतनी प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर वो सही तरह से ज्ञान नहीं प्रदान कर सकेंगे जीवों को। और जब जीवों को पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर वो लक्ष्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले जमाने में राजा जो होते थे वो ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा देते थे, बहुत पर्याप्त मात्रा में दक्षिणा देते थे कभी कभी। लेकिन उस समय के ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा शुद्ध होते थे, उनको लालच नहीं होती थी कि हमें बहुत ज्यादा दान मिलना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा। इवन यहां तक शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कल के लिए नहीं सोचना चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। जैसे वैश्य है ना हम, तो हमें हम संग्रह करते हैं कि भाई एक कल के लिए परसों के मतलब अनाज का और धन का संग्रह करते हैं कि समय आने पर हमें इसको यूज करना है। लेकिन ब्राह्मण को संग्रह नहीं करना होता है। ब्राह्मण के लिए तो यहां तक कहा जाता है कि पहले जमाने क्या होता था कि ब्राह्मण के पास कोई राजा दान देने के लिए आता था तो उसके वो अपनी पत्नी से पूछता था कि भाग्यवान शाम के लिए भोजन है, तो बोलती थी कि हाँ प्रभु अभी तो भोजन हमने कर लिया, शाम के लिए भोजन है, अभी अभी और भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो फिर वो वापस कर देता था दान वाले को कि नहीं भाई हमारे पास शाम के लिए भोजन है तो आज हमें इस दान की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर किसी ने अभी भोजन नहीं किया होता था मतलब सुबह के बाद तक, सुबह के समय अगर कोई राजा दान देने के लिए आते थे तो फिर ब्राह्मण अपनी पत्नी से पूछते थे कि भाग्यवान अभी भोजन के लिए आपके पास सामग्री है, तो बोलती थी हाँ अभी के लिए है। तो फिर है ना वो बोलता था बस अभी हमें नहीं चाहिए, हमारे पास अभी के लिए। तो उससे पूछा जाता था कि भाई शाम को खा लीजिएगा, शाम के लिए रख दो, तो कहता था कि जिस भगवान ने अभी दिया वो शाम को भी दे देगा, मुझे संग्रह नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ब्राह्मण जो है वो संग्रह करके रखते नहीं थे, वो भी उस दान को भगवान की सेवा में लगा देते थे। किसी भी तरह से जो भी प्राप्त होता था धन दौलत और ये सब, वो सब मंदिरों में भगवान की सेवा में ब्राह्मण अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए इस दान दक्षिणा को सोने चांदी को नहीं लगाते थे। लेकिन राजा लोग क्योंकि जानते थे कि जब दान ब्राह्मण को लगाया दिया जाएगा उसी से ही सबका कल्याण होगा, क्योंकि फिर मंदिरों में है ना बहुत अच्छे अच्छे विग्रह की सेवा होगी, प्रसाद होंगे, भंडारे होंगे, प्रवचन होंगे, तो फिर सारे साधारण लोग वहां पर आएंगे और सबका कल्याण होगा ना। इसलिए ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान दिया जाता था। तो महाराजा परीक्षित ने भी गंगा के तट पर 3 यज्ञ संपन्न किए और सारे जितने भी ब्राह्मण थे उनको प्रचुर मात्रा में दान दिया। और आगे सुध गोस्वामी बता रहे शारदवत्तम, शारदवत्तम किसका नाम है, कृपाचार्य का। जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में योद्धा थे उन सबकी मृत्यु हो गई थी, सिर्फ अश्वत्थामा कृपाचार्य और सात्यकी, हाँ ये 3 लोग ही बचे थे। और अश्वत्थामा का भी जैसे हमने पढ़ा कि किस प्रकार से उनका हनन किया द्रौपदी के, जब 5 पुत्रों पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था तो अर्जुन एक पशु की भांति उनको बांध कर आ गए थे और उनका बहुत ही उपहास किया था। अब केवल कृपाचार्य जो थे वो कुरुसभा में बाकी बचे थे कृपाचार्य। तो कृपाचार्य को उन्होंने शारदवतम गुरु कृत्वा, फिर वो परीक्षित महाराज जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे उन्होंने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया, गुरु स्वीकार किया। यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। ऐसे गुरु के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है, संभव नहीं लिखा है श्री प्रभुपाद जी ने। श्री प्रभुपाद जी जिन जो ये कहते थे कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड ऑफ फूलिश डिक्शनरी, वो बता रहे हैं कि असंभव है कि यदि किसी ने आध्यात्मिक में प्रगति की हो और उसके पास प्रमाणिक गुरु ना हो, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो भगवान हो या भगवान के भक्त। इस भौतिक जगत में यदि वो सही रास्ते पर जाना चाहते हैं तो वो गुरु को अवश्य स्वीकार करते हैं। भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु हम जैसे पतित आत्माओं को शिक्षा देने के लिए स्वयं भगवान भी गुरु को स्वीकार करते हैं। जब भगवान श्री राम आए तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो सांदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण की, और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की। तो यहाँ पर हमें समझाया जा रहा है कि चाहे हमारी कोई भी स्थिति हो, गुरु करना अत्यधिक आवश्यक है यदि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, यानी कि वो परंपरा से आना चाहिए और उन्हें संपूर्ण तत्वदर्शी होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 4.34 में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्षेण सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। वो ज्ञानी जो तत्वदर्शी है वही आपको सही उपदेश प्रदान कर सकता है। वो प्रामाणिक होना चाहिए, अर्थात परंपरा से युक्त होना चाहिए। जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए ऐसे गुरु को, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बैठे हैं घर पे और कभी न कभी कोई गुरु आके हमें स्वीकार कर लेगा। हमें पूरे संसार में अपनी बुद्धि को यूज करके एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब तक मैंने अपने गुरु महाराज, मुझे कोई शुद्ध गुरु, शुद्ध वैष्णव का संग नहीं मिला, तब तक तो मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक शुद्ध वैष्णव जो कि परंपरा से युक्त हो, जो कि कृष्ण तत्व वेता हो, जो कि अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हो, जो कि जो आचरण जो बोलते हो वैसा ही आचरण करते हो, शास्त्रमय आचरण हो जिनका, ऐसे गुरु महाराज जिन्होंने अपने मन वाणी और जनन इंद्रिय के वेग को रोका हो, जो क्रोध के वेग को रोक सकते हो, ऐसे गुरु महाराज को ढूंढ कर उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने भी शारदवतम गुरुम कृत्वा कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया, और उन्होंने जब यज्ञ किए थे तो उस समय बहुत ही आश्चर्यमय घटना, यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं, देवा यत्राक्षी गोचरा, देवा ऐसी जगह वो जब गंगा पर यज्ञ, गंगा के तट पर यज्ञ कर रहे थे तो सारे देवता आए थे, उनके यज्ञ की सामग्री जो वो भेंट दे रहे थे उनको स्वीकार करने के लिए देवता साक्षात स्वरूप में आए थे। ये कलयुग की बात है, कलयुग का प्रथम चरण आ चुका है और उस समय भी देवता इस भौतिक जगत में आते थे, पृथ्वी पर आते थे स्वर्ग लोक को छोड़कर। यदि कोई सच्चे मन से सच्चा राजा जो है वो यज्ञ इत्यादि करते थे तो ना केवल वो आए थे बल्कि आगे कहते हैं यत्राक्षी गोचरा, यत्र जो अक्षी गोचरा मतलब ऐसा नहीं था कि हम सिर्फ इमेजिन कर रहे थे कि हाँ देवता आए होंगे वो देख रहे हो, नहीं, अक्षी गोचरा, अक्ष कहते आंख को, आंख के द्वारा दिख रहे थे देवता, वो दिखाई दे रहे थे कि सारे देवता आए हैं और यज्ञ में भाग ले रहे हैं। तो कितने पवित्र राजा थे ये। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमने भागवतम में कई बार ऐसा देखा है कि राजाओं तथा सम्राटों द्वारा जो संपन्न होते थे यज्ञ इत्यादि, वहां पर स्वर्ग के निवासी जो थे वो भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। और यहाँ पर तो श्रील प्रभुपाद, यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अक्षी गोचर, उनको आंख से देख सकते थे कि देवता आए हैं। तो कितने महान राजा हैं ये कि इनके कार्यों से प्रसन्न होकर देवता अपनी अहित की कृपा से इस भूलोक पर आते हैं और सामान्य व्यक्तियों को भी दर्शन देते हैं। जिस प्रकार भगवान को कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो भगवान जो है वो अवतरित होते हैं साधारण जनता, साधारण प्राणियों पर कृपा करने के लिए, तो फिर सब भगवान की कृपा से उनको देख सकते हैं, अहित की कृपा है ये भगवान की। उसी तरह देवता भी जन सामान्य पर कृपा करने के लिए सबकी दृष्टि के सामने दृष्टि गोचर होते हैं, यदि कोई पवित्र भक्त तो उनको बुलाता है, यज्ञ संपन्न इत्यादि करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं, यज्ञ दान तपह कर्म न त्याजत कार्यमेतत, यज्ञोदान तपस्यैव पावनानि मनीषिण। भले आप कितने ही पवित्र मनुष्य क्यों न बन जाओ, यज्ञ दान और तपस्या के कार्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो राजा हैं, वो पहले जमाने में राजा लोग जो हैं, वो यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए उनका राज्य, अभी देखो राज्य चलाने के लिए उनको संपन्नता चाहिए होती थी, फिर यज्ञ करने से क्या होता था, सारे देवी देवता प्रसन्न होते थे। और भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जब देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो फिर वो आपको प्रसन्न करते हैं, और फिर जो ये आदि दैविक कष्ट होते हैं प्रजा के ऊपर, जैसे बहुत वर्षा हो जाना, बहुत कष्ट, सूर्य तपिश बहुत ज्यादा हो जाना, सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, या फिर भूकंप आ जाना, क्योंकि देवता प्रसन्न होते थे तो फिर ये सब आदि दैविक कष्ट जो है वो प्रजा को नहीं मिलते थे। इसलिए जो जितने भी राजा होते थे, क्योंकि वो प्रजा का अपने बच्चों की तरह पालन करते थे, इसलिए वो देवताओं को प्रसन्न करते थे, और देवता लोग जब प्रसन्न हो जाते थे तो वो प्रजा जो है वो संतुष्ट हो जाती थी। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो देवताओं को ही भगवान मानते थे, नहीं, वो जानते थे कि ये जो यज्ञ है उसमें देवताओं का भी भाग होता है, परंतु वास्तव में भगवान कृष्ण हैं और वो कृष्ण के भक्त होते थे। इसीलिए वो है ना, जो देवता जो हैं, क्योंकि कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं, तो प्रतिनिधि मानकर उनको प्रसन्न करते थे ताकि उनकी प्रजा संतुष्ट रह सके। आगे ये जो महाराज परीक्षित हैं, वो दिग्विजय करने के लिए जाते हैं। एक दिन दिग्विजय करने का मतलब है कि वो ऐसे भ्रमण करने जाते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से शासन, सारा जो मेरे अलग अलग राज्य हैं उनमें किस तरह से शासन चल रहा है, सारे लोग सुखी तो हैं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। तो जो राजा होते थे वो जाते थे सब जगहों पर इस तरह से भ्रमण करने के लिए। तो उसके लिए सूत गोस्वामी कहते हैं, निज ग्राह जसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंग धरम शूद्रम नन्तं गोमिथुनं पदा। निज ग्राहो जसा वीर कलिम दिग्विजये क्वचित् नृपलिंग धरम शूद्रम नन्तं गोमिथुनं पदा। निज ग्राहो जैसा मतलब उन्होंने बहुत दंडित किया, बहुत ओ जैसा का मतलब होता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पराक्रम था, वो बहुत वीर थे, उन्होंने दिग्विजय किया हुआ था, सब जितने भी छोटे मोटे राजा थे वो सब उनके अधीन थे। तो एक बार उन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ उसको दंडित किया, किसको, कलिम, कलिम मतलब इस युग का जो स्वामी है, कली वो आया था और उसने उनको बहुत दंडित किया। कब, दिग्विजये क्वचित्, जब वो दिग्विजय करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कलयुग से उनकी भेंट हुई और कलयुग को बहुत दंडित किया। तो प्रश्न उठता, क्यों दंडित किया, वो ऐसा क्या कार्य कर रहे थे कि उनको निज ग्राहो जस, उनको बहुत ही पराक्रम के साथ उनको दंडित करना पड़ा। तो उत्तर देते हैं, नृप लिंग धर्म, नृप कहते हैं राजा को, और लिंग धर्म मतलब उसको वेश धारण किया होता, वो था तो कली लेकिन साक्षात राजा का ही वेश धारण करके वहां पर बैठा था, राजा सामने खड़ा है और मेरे ही सामने मेरा ही कोई वेश धारण करके कर क्या रहा था, वो शूद्र था और राजा का वेश धारण करते करके ग्नंतम गोमिथुनम पदा, ग्नंतम मतलब मार रहा था, चोट मार रहा था, उस पर प्रहार कर रहा था, किसको, गोमिथुनम, मिथुनम मतलब जोड़ी, गौ और बैल की जोड़ी जो होती है उसको बोलते हैं गोमिथुनम पदा, उनके पैर पर जोर से आक्रमण कर रहा था। तो फिर राजा ने उनको बहुत ही दंडित किया। अनुवाद देखिए, एक बार जब महाराज परीक्षित दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलयुग का स्वामी जो
क्षुद्र से भी निम्न था राजा का वेश धारण करके गाय तथा बैल की जोड़ी के पांव पर प्रहार कर रहा था। राजा ने उसे पर्याप्त मात्रा में दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, दिग्विजय करने के लिए राजा के बाहर निकलने का उद्देश्य आत्मश्लाघा नहीं है। मतलब वो ये नहीं सोचते थे कि सब लोग मेरे मातहत हो जाएंगे, मैं सबके ऊपर आके राज्य करूंगा, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं होता था। महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु अन्य राजाओं को उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए वो ये नहीं सोचते थे कि मैं सबके साथ हिंसा करूंगा, सबको मारूंगा और फिर खुद एक क्षत्र राजा बन जाऊंगा, इसके लिए नहीं। वे विश्व के सम्राट थे और समस्त छोटे छोटे राज्य उनके अधीन थे। उनके बाहर जाने का उद्देश्य यह देखना था कि इस दैवी राज्य में किस तरह से शासन चल रहा था। वो देखना चाहते थे कि, क्योंकि ज्यादातर राज्य जो छोटे छोटे थे वो सब उनके ही अधीन थे, वो देखना चाहते थे कि किस तरह से चल रहा है। भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं को भली भांति पूरा करना होता है। इसमें आत्मश्लाघा का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल की जोड़ी को के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे बंदी बनाकर दंड दी। तो जैसे ही महाराजा परीक्षित ने देखा कि एक मनुष्य जो कि निम्न जाति का है, क्षुद्र से भी गया गुजरा है, वो गाय और बैल को मार रहा है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था। महाराजा परीक्षित ने कभी भी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति गाय और बैल जैसे पवित्र पशु के ऊपर आक्रमण करे, वो सोच भी नहीं सकते थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति गाय और बैल को आक्रमण कर रहा है, उनके पैर पर प्रहार कर रहा है, फौरन से उनको पकड़ा और दंड दे दिया। उनको बहुत उत्पीड़ित किया, उसको बहुत ही दुखी होकर उनको बहुत ज्यादा दंडित किया। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में गाय तथा बैल के पांव पर प्रहार करते देखा तो उन्होंने तुरंत ही बंदी बनाकर उनको दंड दिया। राजा ना तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकते हैं और ना ही सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले वाले श्लोक में बताया कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा आदर देते थे, बहुत दक्षिणा देते थे और ब्राह्मण कृपाचार्य को उन्होंने अपना गुरु तक बनाया, और जो गाय है उन पर प्रहार नहीं देख सकते। तो वास्तव में एक जीव यदि वास्तव में वो एक अच्छा राजा है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो गौ और ब्राह्मण की रक्षा करे। गौ और ब्राह्मण का अनादर होते हुए वो कभी नहीं देख सकता। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना और इसके पालन के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मानव समाज जो है उसका कल्याण तभी संभव है जब ब्राह्मणों की रक्षा होगी। क्योंकि ब्राह्मण नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, ब्राह्मण नहीं होंगे तो वेद कहाँ से समझ में आएंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे तो शास्त्र कौन बताएगा, ब्राह्मण नहीं होंगे तो क्रिया कौन करेगा। ब्राह्मण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है और ब्राह्मण की बुद्धि जो है, सात्विक बुद्धि तभी जीव के अंदर आ सकती है जब वो गौ का दूध पीता है। गाय के दूध में ऐसे तंतु होते हैं, ऐसे विटामिन्स होते हैं जिसके कारण हमारी बुद्धि सात्विक होती है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और इसके पालन के लिए गौ रक्षा अनिवार्य है। गौ दूध में जादू है क्योंकि इसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक विटामिन्स होते हैं। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्वगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए और इसके लिए दूध फल तथा अन्न का तैयार भोजन मूल आवश्यक है। ब्राह्मण संस्कृति कब प्रगति कर सकती है, जब सत्वगुण विकसित हो, और सत्वगुण जो है वो सत्वगुणी आहार से ही संभव है और सत्वगुणी आहार में सबसे मुख्य वस्तु है गौ का दुग्ध। तो गौ दूध जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक है यदि अपने पूरे समाज को पवित्र बनाना है तो, उसकी बुद्धि को सात्विक बनाना है तो। तो महाराज परीक्षित चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कलह। इस कुव्यवस्था तथा कलह का मूल कारण यह है कि निम्न श्रेणी ने के निकम्मे व्यक्ति जिनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है वह राज्य के प्रबंध में अग्रणी बनते रहते। उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो राज्य के अग्रणी बने हुए हैं, राज्य को संभाल रहे हैं, राज्य के प्रबंध कर रहे हैं। तो राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय तथा ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं जिससे सारा समाज गर्त की ओर बढ़ता है। अब वैसे तो राजा को क्या करना चाहिए, राजा का कर्तव्य है कि गौ ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन आजकल समाज में राजा ऐसे हैं, उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है और वो सबसे पहले गौ और ब्राह्मण को ही हानि पहुंचाते हैं। और इन दोनों को जैसे ही हानि पहुंचती है तो सारा समाज जो है वो गर्त की ओर, मतलब नीचे कुमार्ग की ओर चलता है, क्योंकि ब्राह्मण होते नहीं है और गौ जो है ना उसका वो नहीं होती है, उससे उसका दूध भी नहीं होता है। तो जीव जो है वो सात्विक जीवन जीने की कला भूल जाता है, इसलिए उसका जीवन निम्न तर होता चला जाता है। स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पा ली थी। मूल कारण क्या है झगड़े का, फसाद का, ब्राह्मण और गौ का की हिंसा। तो जैसे उन्होंने देखा अगर ब्राह्मण अगर गौ का वध हो जाएगा, आज मैं इसको छोड़ दिया, ये गौ को प्रहार कर रहा है, आज यदि मैंने इसको दंडित नहीं किया तो फिर तो दूसरे लोग भी ऐसे करेंगे ना, फिर तो सब लोग गौ को मारेंगे, गौ की हत्या करेंगे। तो फिर ये देख नहीं सके महाराज परीक्षित ने, जब देखा कि ये काला व्यक्ति जो है वो गौ पर प्रहार कर रहा है, तो उन्होंने फौरन उसे पकड़ लिया और दंडित किया कि ये काम मैं नहीं होने दूंगा अपने राज्य में, अपने राज्य में मैं कभी भी गौ के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। तो जैसे ही यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते, स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण, क्योंकि उनकी शिक्षा ऐसी हुई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों का आदर करते थे और जैसे हमने पहले पढ़ा कि वो जो भी राज्य कार्य करते थे वो ब्राह्मणों से ही उपदेश लेने की बात करते थे, तो उनकी शिक्षा ऐसी थी। तो उन्होंने संसार के सारे झगड़े का के कारण की गंध पाली, अतएव वे इस प्रारंभ में ही इसको रोक देना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो भक्तों, ये कितना बहुत बड़ा अपराध है कि आज भागवत जो है उसके मेन वक्ता, जो मेन कैरेक्टर है परीक्षित महाराज, वो हमें पहला सबक दे रहे हैं कि वो राज्य कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता जहाँ पर गौ के ऊपर जो है वो प्रहार होता है, गौ का अगर अनादर होता है या ब्राह्मण का अनादर होता है, जिस और ब्राह्मण भी समाप्त हो जाते हैं अगर गौ नहीं होती है तो, क्योंकि सात्विक वस्तु उनको नहीं प्राप्त होती है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है गौ की रक्षा करना। तो जैसे उन्होंने देखा कि गौ के ऊपर प्रहार हो रहा है तो मानो उनके हृदय के ऊपर प्रहार हो रहा था। और लिखा है यहाँ पर साफ साफ सुध गोस्वामी ने, निज ग्राहो जैसा, उन्होंने बहुत बहुत दंडित किया, वीर बहुत ही पराक्रम के साथ उस व्यक्ति को पकड़ के उसको दंडित किया कि तुम मेरे राज्य में गौ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हो। और आज हम देखते हैं कि कैसे इस भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर कैसे राजा हैं जो कसाई घर खोल के दे देते हैं कि जाओ यहाँ पर तुम लोग जाओ गौ की हत्या करो, गौ का मांस आहार करो। शास्त्र तो यहाँ तक कह रहा है वो धरती, वो भूमि जिस पर एक बूंद भी यदि गौ के रक्त की गिरती है तो वो भूमि पर रहने वाले लोग कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में
हर रोज न जाने कितनी गऊओं की हत्या हो रही है और यही कारण है कि कलह में कलयुग में केवल कला ही कला है। हर जगह झगड़ा है, फसाद है, दुख है, अशांति है, हृदय सबका दुखित है, करुणा किसी के अंदर जैसे जैसे ऐसे लोगों के साथ रहते रहते जीव के हृदय की करुणा ही समाप्त हो गई है। तो आगे जब इतना शौनक मुनियों ने सुना कि एक व्यक्ति जो कि गऊ के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रहा था, उनके चरण को प्रहार कर रहा था, तब वो उनके मुख से अचानक एक प्रश्न निकला। मतलब वो सुन नहीं सक रहे थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सुध गोस्वामी से कथा सुनने के लिए बोलेंगे और वो इस तरह की कथा सुनाएंगे जिसमें गऊ के ऊपर प्रहार हो रहा है। तो उन्होंने फौरन से एक प्रश्न किया। शोनक उवाच
कस्य हेतुर् निज ग्राह कलिम दिग्विजयी नृपः नृदेव चिन्ह दृक्षुद्र कौ असौ गाम्य पदाहन तत्कथयाताम् महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् कस्य हेतुर्निज ग्राह कलिम दिग्विजयी नृपः नृदेव चिन्ह दृक्षुद्र को असौ गाम्य पदाहनत् तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम् कस्य हेतुर
मतलब क्यों। शौनकों ने कहा ये इसका क्या कारण है, क्या हेतु है उसका। निज ग्राह कि उन्होंने काली उनको दंड दिया, पर्याप्त मात्रा में दंड दिया। एक वो व्यक्ति जो एक राजा का, वो क्षुद्र होते हुए भी राजा का वेश धारण करके आया था, वो एक गाय के ऊपर आक्रमण कर रहा था और राजा ने जो कि दिग्विजय करके आ रहे थे फिर भी उन्हें सिर्फ दंड दिया। कस्य हेतुर्निज ग्राह कलिम दिग्विजय नृप नृप मतलब वो राजा जो दिग्विजय करके आ रहे थे, उन्होंने कलयुग के स्वामी को खाली दंड दिया। और वो कर क्या रहे थे, नृदेव चिन्ह दृक शूद्र को, वो शूद्र थे, शूद्र से भी गिरे हुए व्यक्ति थे। और उन्होंने क्या किया था, राजा का वेश धारण किया हुआ था और असौ गाम्य पदाय और फिर वो गाय के चरण पे आक्रमण कर रहा था, उनके ऊपर प्रहार कर रहा था और राजा ने उनको केवल दंड दिया। उसी समय उसको मार क्यों नहीं डाला, मार डालना चाहिए था ऐसे व्यक्ति को जो गाय के ऊपर आक्रमण कर रहा था, मारा क्यों नहीं। लेकिन साथ में ये बता रहे हैं कि देखिए सुत गोस्वामी, हमें उस क्रूर व्यक्ति या कलयुग के स्वामी के विषय में सुनने में कोई रुचि नहीं है, हम नहीं सुनना चाहते उसकी कथा, हमें कोई आकर्षण नहीं है उसकी कथा के विषय में। लेकिन तत्कथ्यताम महाभाग, हे महाभाग, क्योंकि आप जो है वो बहुत भाग्यशाली हैं, आप केवल भगवान के विषय में ही बोलना पसंद करते हैं, इसीलिए तो हम आपके आपसे सुनना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं वो केवल मेरे विषय में बोलना पसंद करते हैं और मेरे विषय में सुनना पसंद करते हैं। तो शांति च रमणति च, उनको केवल इसी में आनंद आता है कि वो मेरे विषय में श्रवण करना चाहते हैं और मेरे विषय में ही बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर शौनक मुनि सूत गोस्वामी को कहते हैं तत्कथ्यताम, आप वो बताइए परंतु एक शर्त है, वो तभी बताइए यदि कृष्ण कथाश्रयन, यदि वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अगर वो कथा जो इस कलयुग की आपने अभी बताई जो संक्षिप्त में, वो अगर कृष्ण कथा से संबंधित नहीं है तो फिर हम उससे सुनना नहीं चाहते। आज का मनुष्य बिल्कुल इसके अपोजिट है। कृष्ण के विषय में यदि हम कुछ सुनना ना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये क्या सारा दिन कृष्ण के विषय में बोलता रहता है, कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है इनके पास, बस वही टॉपिक है कृष्ण कृष्ण, भगवत गीता भागवतम, केवल यही बात। लेकिन यहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सूत गोस्वामी के चरणों को पकड़ के बोलते हैं कि आप बताइए, परंतु तभी बताइए यदि कृष्ण कथा श्रयण कि अगर वो कृष्ण से संबंधित है तो बताइए, क्योंकि मनुष्य का जीव का आत्मा का कल्याण केवल कृष्ण के विषय में श्रवण करने से होता है। कृष्ण के अतिरिक्त साफ साफ नाम लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण का कि यदि कृष्ण कथा श्रयण कि यदि कृष्ण से संबंधित ये कथा है, कृष्ण से इसका रिलेशन है तो हमें बताइए, वरना फिर हम वो सुनने के इच्छुक ही नहीं है, वो बात हमारे लिए कल्याणकारी हो नहीं सकती जिसका संबंध कृष्ण से न हो। तो यहाँ पर शौनक मुनि हमारे लिए एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि यदि श्रवण करना है ना तो केवल कृष्ण से संबंधित वस्तु को ही श्रवण करना चाहिए। कृष्ण की कहे हुए उपदेश श्रीमद् भगवत गीता और कृष्ण की हुई लीलाओं यानी श्रीमद् भागवतम के अतिरिक्त और कुछ सुनने योग्य है ही नहीं। बाकी हम जो कुछ भी सुनते हैं उससे हमारा कभी कल्याण नहीं होता है। इसे यदि जीव को अपना कल्याण करना है तो केवल कृष्ण से संबंधित विषयों को ही श्रवण करना चाहिए। अनुवाद। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया जबकि वह शूत्रों में अधम था, उसने राजा का वेश बना रखा था तथा गाय पर पाद प्रहार कर रहा था। कृपया इन सब घटनाओं का यदि वे कृष्ण की कथा से संबंधित हो तो वर्णन कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पवित्र महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों दिया, उसे मार क्यों नहीं डाला। इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्य आत्मा राजा को चाहिए कि वह ऐसे अपराधी को तुरंत मार डाले जो राजा के वेश बनाकर जनता को ठगता है और साथ ही पवित्रतम पशु गाय को अपमानित करने का दुस्साहस करता है। आज हम इस कलयुग में देखते हैं सारे अपवित्र शूद्र राजा बने हुए हैं और कौ जो कि बहुत ही पवित्रतम पशु है उसके साथ हिंसा की जा रही है। तो वास्तव में एक वास्तविक पवित्र व्यक्ति जो राजा है वो वही हो सकता है जो इन सारे शूद्रों को मार डाले। यहाँ पर यह बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी नहीं कल्पना नहीं की थी कि कलयुग के उन्नत दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए खुले सुनियोजित कसाईघर खोल दिए जाएंगे। जो यहाँ पर जो अभी हो रहा है कि कलयुग में क्या होता है, ये सब शूद्र जो हैं वो प्रशासक बने हुए हैं और गौवध के लिए क्या है सुनियोजित यानी परमानेंट बताया गया कि हाँ भाई यहाँ पर आप गौ की हत्या कर सकते हो, गौ का मांस आहार कर सकते हो। तो कभी वहाँ उस समय के ऋषियों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई युग हो सकता है। केवल उसके जब उस समय उसने देखा कि वो पांव पर प्रहार कर रहा है तो सब ऋषियों ने एक मत होकर कहा कि उसको खाली दंड दिया, इसको तो मार डालना चाहिए था, ऐसे पवित्र पशु यानी गौ के ऊपर प्रहार किया उसने। तो आज ये ऋषि यदि होते और इस तरह से घर गली गली में गौ हत्या को देखते तो उनका क्या भाव होता, वो तो देख ही नहीं सकते थे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जो हो यद्यपि ऋषियों को उस शूद्र के विषय में जो ठग था तथा गाय का अपमान करने वाला था सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा, वो उनको अच्छा ही लगा, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वह श्रवण करने योग्य है। भागवत में
समाज विज्ञान राजनीति अर्थशास्त्र और सांस्कृतिक मामले आदि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे सब के सब श्रवणीय हैं। कृष्ण सभी मामलों में शुद्धिकर्ता अव्यय हैं, चाहे वे जैसे भी हों। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीन गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्ण शुद्ध करता है।
श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति है, तो यहाँ पर चाहे जो भी वस्तु होती है वो तीन गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन कृष्ण क्योंकि इन तीनों गुणों से लिप्त नहीं होते हैं, इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए कृष्ण के विषय यदि हम कोई वस्तु सुनते हैं, फिर वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्र हो, सांस्कृत मामला हो, कोई भी हो, अगर वो कृष्ण से संबंधित है तो अगर हम उसको सुनते हैं तो वो हमारा शुद्धिकरण कर लेता है, लेकिन यदि कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वो वस्तु श्रवण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उससे हमारा शुद्धिकरण नहीं होता, और भी हृदय के अंदर ये तीनों गुण जो हैं वो और भी ज्यादा तीव्रता से उत्पन्न हो जाते हैं और हम इस भौतिक जगत में अधिक से अधिक बंधते जाते हैं, इसे हमें केवल कृष्ण के विषय में ही श्रवण करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।